सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धि सार क्षपणा सार लेक्चर नंबर 13। ओम नमः सिद्धे सिद्धे जिनिंद चंदे कायरिय उवच्छाय साहु गणे वंदिय सम्मतं सण चरित लब्धिं परुवेनु। यह श्री निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमर सार के बाद ये जो लब्धि सार ग्रंथ लिखा है उसकी पंडित टोडरमल जी ने समय ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद देख रहे हम। और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 40 पर। आज से यहाँ लब्धिसार विषय को प्रारंभ होता है। ग्रंथ का प्रारंभ यहीं से होता है। ग्रंथ में जो कोई शब्द पारिभाषिक आए है उस संबंधी लब्धिसार की भूमिका में पंडित टोडरमल जी ने विस्तार से प्ररूपण किया था। अब यहाँ से प्रथम अधिकार शुरू होता है। इसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्ररूपण। प्रथमोपशम शब्द लिखा है उसका अर्थ होता है सम्यक्त्व और भी अन्य किसी प्रकार के होने चाहिए। कौन से सुशीला बेन? शायिक सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक का दूसरा नाम मालूम है? वेदक सम्यक्त्व। तीन प्रकार के सम्यक्त्व पाए जाते हैं। द्वितीय उपशम भी होना चाहिए। उपशम सम्यक्त्व तो में दो प्रकार, प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम। हम इसका स्वरूप समझेंगे तो द्वितीय उपशम की चर्चा करेंगे। पहले ये नक्की करना है कि ये जो प्रथम उपशम सम्यक्त्व तो है, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि को सबसे पहली बार जो सम्यक्त्व तो होता है तो उसको तो प्रथम उपशम सम्यक्त्व ही कहते हैं। यहाँ कर्मों की, विशिष्ट कर्मों की, यानी दर्शन मुनि के और अनंतानुबंधी। दर्शन मुनि का तो अनादि से मिथ्यात्व एक कर्म है और अनंतानुबंधी चार। इनका उपशम करके जब सम्यक दर्शन होता है तब उसको कहेंगे प्रथमोपशम सम्यक्। द्वितीयोपशम कब कहना, किसे कहना है वो बाद में देखेंगे। ऐसा अर्थ नहीं कि एक बार होकर गिरा और फिर दूसरी बार हुआ तो द्वितीयोपशम कहना, ऐसा इसका अर्थ है ही नहीं। दूसरी बार यदि वो उपशम से ही चढ़ता है, अब उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस है, तो तब भी उसको हम प्रथम उपशम ही कहेंगे। अब उसका प्ररूपण ने, उसका निरूपण ने, उसका विशेष व्याख्यान यहाँ हम देखने जा रहे हैं। वहां प्रथम ही मंगल करते हैं। पंडित टोडरमल जी ने टीका लिखी है तो टीकाकार स्वयं यहाँ मंगलाचरण करेंगे। पहले लब्धिसार ग्रंथ का मंगलाचरण उन्होंने कहा था, लिखा था, वो याद है ना कौन सा था? वो सम्यक दर्शन चरण गुण हम जो गाते थे ना पहले निकालो। ये ग्रंथ का मंगलाचरण का, ये यहाँ अधिकार का मंगलाचरण, यहाँ 9 पेज पर है। देखो, सम्यक दर्शन चरण गुण पाए कुकर्म कृपा। और उसके बाद उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका भी लिखी थी, जो जीव कांड में भी हमने पढ़ी, कर्मकांड में भी पढ़ी। यहाँ उसको नहीं लिया है, यहाँ डायरेक्ट लब्धिसार भूमिका से प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पर जो अधिकार है, पहला अधिकार, उसका मंगलाचरण यहाँ करते हैं। हम पढ़ेंगे उसको। श्री अरहंत सिद्धवर सूरी उपाध्याय धारे गुण भूरी साधु परम मंगल जग ज्येष्ठ जय शरणागत को परमेश्वर। देखो क्या कहते, अरिहंत सिद्धवर ने सिद्ध भगवान, सूर्य ने आचार्य, उपाध्याय धारे गुणभूरी साधु, यानी और साधु परमेश्वर, ये पांचों ही परमेश्वर हो गए। वो कैसे है? परम मंगल है, सर्वोत्कृष्ट ऐसे जो मंगल है और जग में सबसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। और जय शरणागत को परमेश्वर, परम इष्ट ने परमेश्वर कहा या अपना इष्ट करने वाले वो परमेश्वर कहा उनको, तो उनको शरण भूत जो जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके शरण जाने वालों का वो कुछ उपकार करते होंगे, कोई उद्धार करते होंगे। जैसे आप मेरे शरण में आ जाओ और मैं आपको कल्याण, आपका कल्याण कर दूं, ऐसे जो अन्यमति की मान्यता है, कल्पना है देव संबंधी, वैसे है नहीं। क्योंकि जीव इनके शरण में जाता है, उनके उपदेश के अनुसार मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट करना है जानता है, स्वयं अपना कल्याण करता है, तो कहेंगे इन्होंने हमारा कल्याण करा। अब ये तो उन्होंने स्वयं मंगलाचरण किया है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने ग्रंथ यहां से प्रारंभ किया है, लब्धिसार ग्रंथ। उन्होंने स्वयं जो पहली गाथा रूप जो मंगलाचरण किया था उसको तो हमने गाया था, फिर दोबारा पढ़ेंगे प्राकृत में भी और संस्कृत में भी। सिद्धे जिनिंद चंदे आयरियव्वच्छाय साहुगणे वंदीय सम्मद्दं सन चरितलतिं परूहेमो सिद्धांजिनेन्द्र चंद्रां आचार्योपाध्याय साधुगणां वंदित्वा सम्यक् दर्शन चारित्र लब्धिं प्ररूपयामः। देखो क्या सिद्धान, यानी सभी सिद्धों को हम संस्कृत में से पढ़ेंगे। जिनेन्द्र चंद्रान, जिनेन्द्र चंद्र यानी अरिहंत भगवानों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुगणों को वंदित्वा यानी वंदन करके। तो हम क्या करेंगे या मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे आचार्य लिखते हैं, तो सम्यक दर्शन चारित्र लब्धिम प्ररूपयामः, सम्यक दर्शन लब्धि और सम्यक चारित्र लब्धि का मैं कथन करूंगा। अब इसकी टीका पढ़ेंगे। जिनेन्द्र जो अरहंत वे ही हुए सकल लोक के प्रकाशने से व आह्लाद करने से चंद्रमा। जिनेन्द्र चंद्र कहा, जिनेन्द्र भगवान को चंद्र की उपमा दी। क्यों उपमा दी है? जैसे पूरे लोक को प्रकाशते हैं, प्रकाशित करता है चंद्रमा, ऐसे प्रकाशित करते नहीं, उसका स्वरूप बताते पूरे लोक का। स्वयं तो केवल ज्ञान से जानते ही है और उसका स्वरूप बताते भी है। या दूसरे क्यों, तो चंद्रमा जैसे आह्लाद कारक होता है, प्रसन्नता होती है, वैसे ये भी आह्लाद करने वाले, जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाले। हाँ पता है ना, अभी वही तो बता रहे, जान भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। और कृतकृत्य हुए सिद्ध भगवान को, कृतकृत्य ने करने जैसा है वो सब कर लिया, वो कृतकृत्य। हम कृतकृत्य कब मानते हैं वीरेश भाई? हाँ अरविंद भाई को भी पता है, जब लड़की की शादी हो गई तब हमने कृतकृत्य माना, लड़के की भी। तो सिद्ध भगवान को और पंचाचार के प्रवर्तक आचार्य। ये पंचाचार क्या होता है? नलिन भाई तो एकदम उत्साह से उत्तर देने के लिए तैयार है, बोलो। ये पांच आचार बताए हैं आचार्य भगवान के, इसके प्रवर्तक होते हैं। और अध्ययन करने कराने में अधिकारी उपाध्याय को, देखो हर एक का वहाँ तो उनका बिल्कुल एक एक लाइन में उनके मेरे लेके तो डिपार्टमेंट बता देते हैं। वे स्वयं अध्ययन करते हैं, 12 अंगों के ज्ञाता है और संघ में अन्य साधुओं को पढ़ाते दिए और मोक्ष मार्ग के साधक साधु समूह मोक्ष मार्ग के साधने वाले वो साधक है, इसलिए साधु शब्द आया। साधु समूह को वंदन करके मैं कौन स्वयं आचार्य निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिख रहे, जिसमें सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की लब्धि अर्थात प्राप्ति का प्रतिपादन किया है, ऐसे लब्धि सार नामक शास्त्र का प्रारूपण करता हूँ। प्रारूपण ने विशेष व्याख्यान करता इस ग्रंथ के द्वारा हमें जब सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है जीव को, तो उनके परिणाम में क्या क्या होता है और कर्मों में क्या क्या होता है, इसके बहुत विस्तार से यहाँ वर्णन चलेगा। हाँ
हाँ यहाँ जो लिख रहे हैं आचार्य उपाध्याय और साधु गणा, तो गण का अर्थ होता है मुनि
समूह।
यहाँ जो मुनि है उनका जो समूह है, तो पहले उन्होंने जो श्रेष्ठ है वो कौन है, आचार्य है। तो हमारे जो कणधर है, कणधर यानी जिनके पास बहुत साधुओं का समूह है, उनको ही गणेश भी कहेंगे। गण यानी जो मुनि उनके ईश यानी उनके प्रमुख, और उसका सब अभी आप ध्यान देखिए आगे गड़बड़ हो गया। गणेश कहने से ना एक्चुअली गणधर की बात होती है, दोबारा की रचना करते हैं आगे।
ऐसी आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं। देखो ये मंगलाचरण की बात है कि इसमें तो पंच परमेश्वरों को नमस्कार किया जाता है, और कौन से ग्रंथ लिखने वाले हैं उस संबंधी प्रतिज्ञा करके ये कथन करते हैं। है तो सत्य महाव्रत के धारी, फिर भी स्वयं प्रतिज्ञा पूर्वक ग्रंथ की रचना करेंगे। ऐसे पद्धति ही है, मंगल करने की पद्धति है कि ग्रंथ कौन से ग्रंथ लिखेंगे, कितना लिखेंगे, किसके निमित्त से लिखेंगे, वो सब बताया जाता है उसमें।
यहाँ पर और एक बात विशेष रूप से ध्यान में आनी चाहिए, साधु समूह का वर्णन करके जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सम्यक दर्शन और चारित्र की प्राप्ति अर्थात प्राप्ति का प्रतिपादन किया है, यानी ये करणानियोग पढ़ने से सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, ये भी बात सिद्ध होती है। कल में तो प्राप्ति के
प्रतिपादन है, इसमें
प्राप्ति का प्रतिपादन किया है, ऐसे लब्धि सार नामक शास्त्र का प्रारूपण कर रहा है, इतनी बड़ी बात बता।
वहाँ प्रथम ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व का विधान कहते हैं। धर्म की शुरुआत ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व से होती है, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है, और वहाँ उसको सबसे पहले में पहले लब्धि यानी प्राप्ति, लब्धि का अर्थ होता है लाभ। हम तो लाभ किसमें गिनते हैं जीतू भाई, पैसों में, जो आया उसमें लाभ। तो जो आता है तो ये दुख भी आता रहता है, तो वही लाभ हुआ है अनादि से। कषाय आते हैं, रोना आता है, दुख आते हैं, उसी का लाभ होता रहा आज तक, सच्चा लाभ तो हुआ ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ प्रथम ही, क्योंकि इसमें लब्धि सार लब्धियों की बात करेंगे हम, और दो ही लब्धि यहाँ बताई, मूल व लब्धि तो मोक्ष लब्धि, और वो किससे प्राप्त होता है तो संवर निर्जरा से, और वो कैसे होता है तो दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि से। इसलिए सबसे पहले दर्शन लब्धि है, उसमें से प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात यहाँ बताएंगे। दो नंबर की गाथा पढ़ेंगे। चतुगति मिच्छो सन्नी पुन्नो गब्बन विशुद्ध सागारो कड़मु वसनं सगिन्नदि पंचम वर रत्नमम्मी पंचम वर लद्दि चरमम्मी चरिमम्मी। चतुर्गति मिथ्या संगी पूर्ण गर्भजो विशुद्ध साकार प्रथमोपशमं स गृह्णाति पंचम वर लब्धि चरमे। देखो इसका अर्थ देखते, पहले गाथा की बात करेंगे। चतुर्गति मिथ्या, चारों ही गतियों का मिथ्या दृष्टि। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो मिथ्या दृष्टि चाहिए। सम्यक दृष्टि को प्रथम उपशम समय तो नहीं होगा। मिथ्या दर्शन जो इसके है, मिथ्या दृष्टि अवस्था में से, मिथ्या तो गुणस्थान में से प्रथम उपशम सम्यक की प्राप्ति होगी। तो कौन सी गति वाले के होगी?
चारों गति वाले।
चारों गति, इसलिए चतुर्गति मिथ्या कहा। संगी, संगी पंचेंद्रिय के ही होगी। आगे लिखते पूर्ण है ने पर्याप्त तो कोई होगी। संगी पंचेंद्रिय है परंतु अभी अपर्याप्त अवस्था चल रही तो नहीं होगा। आगे लिखते गर्भजो, गर्भज होना चाहिए। देवनार की तो उपपाद जन्म वाले हैं, उनके लिए कंडीशन नहीं है। परंतु तिर्यंश सम्मूर्छन भी होते संगी पंचेंद्रिय रेगुलर पर्याप्त जो है, तो उनको वेदक समय तो हो सकता है, प्रथम उपशम नहीं होता। इसलिए गर्भज कंडीशन डाले। मनुष्य तो गर्भज है, पर्याप्त मनुष्य तो गर्भज ही होते हैं। लब्धि अपर्याप्त उनको तो सम्यक ही नहीं होता है, इसलिए उनकी बात कहने की जरूरत नहीं है। परंतु संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश करोड़ पूर्व की आयु वाले भी हो सकते हैं सम्मूर्छन जीव, परंतु उनको प्रथम ऑप्शन सम्यक तो नहीं होता, इसलिए यहाँ गर्भज की कंडीशन डाली। देखो सम्मूर्छन क्या होगा उसमें, देखो सम्मूर्छन का अर्थ क्या होता है। जन्म के तीन प्रकार है, एक होता है गर्भ जन्म, यानी गर्भ से उत्पन्न होते, माता के गर्भ में से उत्पन्न होते। एक है उपपाद जन्म, देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है, वहाँ देवों में तो उपपाद शैया होती है और अंतर्मूर्त में वहाँ युवा देव उत्पन्न होते हैं डायरेक्ट, ऐसे कोई बालक जन्मा बाद में बड़ा हुआ ऐसा नहीं होता। फिर एक होता है सम्मूर्छन जन्म। सम्मूर्छन जन्म का अर्थ क्या है कि माता पिता के निमित्त बिना वातावरण में से ही वो उस विशिष्ट वातावरण में पैदा होते हैं, तो उसको कहेंगे सम्मूर्छन जन्म। हम देखते घर में हमने कोई अनाज रखा है, पैक बंद अच्छा रखा है और अच्छा साफ सुफ करके रखा था, फिर भी कभी कभी क्या होता है ऐसे बरसात के दिन में उसमें ईयर होती है, अनेक छोटी कीड़े जीवाणु कुछ उत्पन्न होते हैं, वो कहाँ से आए? तो कहते सम्मूर्छन, विशिष्ट वातावरण में वो अपने आप ही उत्पन्न होते हैं, वहां से उत्पन्न होते हैं, कहीं से जीव आकर उन पुद्गल स्कंधों में वहां शरीर धारण कर लेता है। कौन से 14 प्रकार? ना, उसमें तो होते ही है वो कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो कप में हो गए, लाल में हो गए, सर्वत्र होते हैं, सर्वत्र होते हैं।
उल्टी कफ उसमें भी होते हैं,
सब जगह होते हैं। अभी पेट में जो वर्म्स होते हैं वो क्या है? सम्मूर्छन जीव, सम्मूर्छन जीव है। वहां तो कोई उसके है ही नहीं है कि माँ बाप की उसको उत्पन्न। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं, ये तो नियम है। पंचेंद्रियों में अभी तिर्यंशों की बात करेंगे, उसमें तो गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं। और सम्मूर्छन मनुष्य सम्मूर्छन तो लब्धि अपर्याप्त होते, परंतु तिर्यंशों में सम्मूर्छन जीव लब्धि अपर्याप्त भी हो सकते हैं, पर्याप्त भी होते हैं। और पर्याप्ति पूर्ण कर करोड़ पूर्व की आयु भी संगी असंगी पंचेंद्रियों की इतनी बड़ी लंबी आयु हो सकती है, उनके वेदक सम्यक यानी क्षोपक्षम सम्यक हो सकता है, प्रथमोपशम नहीं होगा। यानी पहली बार होने वाला वो प्रथमोपशम ही नहीं, वो तो उपशम अवस्था सहित होने वाला वो नहीं होगा। तो क्षोपक्षम कैसे हो सकता है कि जो उनमें पहले कोई सम्यक दृष्टि हुआ था पूर्व भव में, गिर गया मिथ्यात्व में गया, और अभी कौन सी प्रकृति क्या उसकी चर्चा करेंगे, उसकी सत्ता में वो मिथ्यात्व में से और दो प्रकृति तैयार हुई थी वो सत्ता में पड़ी है, ऐसा जीव सम्मूर्छन तिर्यंच हो जाए तो वहां उसके क्षोपक्षम समेत यानी वेदक समेत तो हो सकता है। ये सम्मूर्छन क्या है पता चला ना, अभी आगे बढ़े। यहाँ कंडीशन है गर्भज की,
या जो पर्याप्त कहा मनुष्य को, अगर मनुष्य पर्याप्त है उसको तो 8 साल के ही होगा ऐसा।
हाँ, वो तो कंडीशन और आगे होगी, 8 साल के बाद होगी। परंतु कोई भी यानी संगी जीव है और अपर्याप्त अवस्था में सम्यक तो प्राप्त करे, ऐसी बात नहीं है। तो मनुष्य के लिए तो 8 वर्ष की कंडीशन है, परंतु देवों में तो पर्याप्ति पूर्ण हुई और अंतर्मूर्त के बाद विशुद्ध हुआ और समय दृष्टि हुआ, ऐसा हो सकता है वहां पर। वहां वो 8 साल की कंडीशन
नहीं,
नारकियों में भी एक अंतर्मूर्त में हो सकता है। और गर्भ जब लिए है तिर्यंश, तो वहां यथायोग्य उनका काल भी जो है अंतर्मूर्त नहीं होता, उनके लिए भी कुछ मास पृथक की बात आती है। अंडज जो है वो गर्भ जन्म का प्रकार है। गर्भ जन्म में 3 प्रकार है, एक अंडज यानी अंडे में जो उत्पन्न होते हैं, एक है जरायुज यानी वो मेम्ब्रेन होता है उसके, और एक है पोत जन्म, पोत वो मेम्ब्रेन नहीं होता है, पोत जन्म, पोत जन्म नहीं है, पोत जन्म है, उसमें जो नहीं लगेगा, पोत इतना ही आएगा। गर्भज में अंडज होते हैं, जरायुज होते हैं और पोत जन्म वाले भी होते हैं। तो ये गर्भ के या जन्म के प्रकार हमने देखे। उसमें भी होते हैं, परंतु उतना ही नहीं, वो तो उसमें जो आप कहते हैं वो तो मनुष्य लब्धि अपर्याप्त की शायद आपने बात की है, उसमें बताया। हम यहाँ तो सभी एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय सभी की बात कर रहे हैं। देखो हमने देखा विशुद्ध
वो भी समूर्छन ही है,
वो समूर्छन ही है, वो गर्भ में नहीं आता, यानी गर्भ कितना भी 1 घंटे में भी गिर जाए यानी मर जाए फिर भी वो कैसे पर्याप्त मनुष्य हो है, वो अपर्याप्त वाला नहीं है। क्योंकि लोग कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि किसी का ऐसा गर्भपात हुआ तो क्या वो अपर्याप्त जीव था, तो नहीं, पर्याप्त मनुष्य भोग था। वो अभी बताया असंगी तो गर्भज भी हो गए दोनों, ये बात अभी बताई थी आप नहीं थे तभी। हाँ देखो ये गर्भज तक आ गया, विशुद्ध यानी विशुद्ध, हाँ आपका प्रश्न है सम्मूर्छन जो पंचेंद्रिय तिर्यंच है वो नपुंसके ही है, आयु हो सकती है अधिक से अधिक, सबको होती है ऐसा नहीं है। हाँ यानी जो कर्मभूमि की मैक्सिमम आयु है तिर्यंच मनुष्यों की वो उतने उनके भी हो सकती है, असंगी को भी हो सकती है। उसकी उत्कृष्ट आयु बताइए, अभी जैसे हमारे यहाँ उत्कृष्ट आयु बताएंगे, कोई 5 साल में 10 साल में 25 साल में भी मरेगा छोटी आयु लेके आया है, वैसे यहाँ वहाँ छोटी आयु के नहीं होते ये बात नहीं है, अधिक से अधिक आयु। अब कहते हैं विशुद्ध यानी पहले में पहले विशुद्धि के काल में होगी, जो समय दर्शन प्राप्त होगा तो उसके पहले विशुद्ध, विशुद्धि की अभी बात करेंगे किसको कहना क्या कहना। और विशुद्धि का अर्थ होता है शुभ यानी मंद कषाय, कषायम की मंदता, जैसे 7वें नरक के नारकी को होगा कि नहीं होगा समय दर्शन प्रथम हो सकता है, तो उसकी लेशा कौन सी होती है, तो उसकी विशुद्धि कैसी होगी, तो कहते कृष्ण लेशा में जो इतने असंख्यात लोक प्रमाण जो वेरिएशंस है उसमें वो मंदता की ओर आता है सम्यक के पहले पूर्व में, उसको कहेंगे विशुद्धि। और विशुद्धि का ऐसा आगे जाके देखेंगे हम, 7 वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों का बंध जिनके कारण होते हैं ऐसे परिणामों को विशुद्धि कहते हैं, यानी विशुद्धि ने वितरकता नहीं, विशुद्धि ने कषायों की मंदता, संक्लेश ने तीव्रता और विशुद्धि ने मंदता, ये विशुद्धि शब्द बार बार आने वाला है। साकार है, साकार किसको कहना, ज्ञानोपयोग को साकार कहते हैं और दर्शनोपयोग को निराकार, अनाकार निराकार, साकार का अर्थ होता है वो तो भेद करके, सविकल्प को भेद करके जानता है, तो उसका इसलिए उसको साकार उपयोग कहते हैं। एक होता है दर्शनोपयोग, सामान्य का सामान्य अवलोकन होता है उसमें, तो उसमें कोई विशेष है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, बस पदार्थ है सत्ता का अवलोकन होता है, उतना ही ग्रहण होता है। वो कौन सा पदार्थ है जीव है कि पुद्गल है, इतना भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता, तो उसको कहेंगे सामान्य ग्रहण, उसको कहेंगे दर्शन उपयोग, उसको कहेंगे अनाकार उपयोग, और ये कैसा है साकार उपयोग, यानी ज्ञानोपयोग में सम्यक दर्शन हुआ। क्योंकि यहाँ तो ज्ञान में ही निर्मलता बढ़ रही है, जब तत्व का निर्णय होता है तो ये जब कार्य जो है वो ज्ञान में ही चलता है, आत्मा का यहाँ अनुभव होता है, समय दर्शन होता है, क्या होता है आत्मा की अनुभूति होती है, और वहां उसके पहले क्या हो रहा है, ये तत्वों की निर्मलता हो रही है, तत्व संबंधी ज्ञान की निर्मलता हो रही है, उसको भी यहाँ विशुद्धि में लेना है। विशुद्धि में केवल वो शुभ भाव नहीं लेना है, नहीं तो ज्ञान की निर्मलता नहीं है और हम कोई तो शुभ भाव करके सम्यक तो प्राप्त हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ सारा ही कार्य ज्ञान में ही हो रहा है। प्रथमोपशमम से गृहणाति, वह जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व का ग्रहण करता है, कैसे, पंचम वर लब्धि चरमे, यानी ये पांच लब्धि पूर्वक ग्रहण करता है, और उसमें से जो अंतिम जो है कौन सी है, करण लब्धि जो है, अभी उसके नाम आ देंगे, तो उसके चरम जो लब्धि है किसका नाम क्या है, करण लब्धि, पंचम वरण जो उत्कृष्ट वाली वो जो है उसके पश्चात जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व का ग्रहण करता है। ये तो गाथा में बताया, अभी उसका विस्तार से चर्चा चलेगी। यहाँ पर चारों गति वाला अनादि या सादी मिथ्या दृष्टि, देखो इसमें वहां तो केवल चतुर्गति मिथ्या इतना ही कहा था, अब इसमें दो बातें लिखी, कौन सी, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या। अनादि से होगा तो प्रथमोपशम ही होगा, और सादी मिथ्या दृष्टि को होगा तो दो ही हो सकते हैं, प्रथमोपशम भी हो सकते हैं और क्षौपशमिक समय तो भी हो सकता है, तो ये कौन नक्की करेगा, कर्म नक्की करता है कि कौन सा प्रथमोपशम होगा कि क्षौपशमिक होगा, कि जीव के वहाँ इच्छा के अनुसार। ये एक हाँ देख ये तो अभी आएगी बात, एक बार सम्यक हुआ है, पहली बार होता है तो प्रथम उपशम होता है, उपशम सम्यक के बाद हो सकता है वो, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, वेदक सम्यक आया, कुछ काल के बाद वो गिरकर मिथ्यात्व में आया। अभी उसे तीन प्रकृतियां हैं, अभी नाम जस सुन लो, बाकी में बाद में उसकी चर्चा करेंगे। एक है मिथ्यात्व प्रकृति, अनादि इसी का बंध होता है, अन्य दो प्रकृतियों का बंध नहीं होता। जब पहली बार प्रथमोपशम होता है सम्यक, तो इस मिथ्यात्व में से अन्य दो प्रकृतियां तैयार होती हैं, उसमें से संक्रमण होकर अन्य दो प्रकृतियां तैयार होती, उसका नाम क्या है नरेंद्र भाई, यह मिथ्यात्व, उसमें से जो तैयार हुई है वो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो जब सम्यक दर्शन हुआ तो ये तीन प्रकृतियां वहां हो गई, मिथ्यात्व का तो उपशम है उसका उदय नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का भी उदय नहीं है, उपशम सम्यक्त्व के बाद सम्यक्त्व यदि चल रहा तो क्या होगा, सम्यक प्रकृति का उदय चलेगा और उसका सम्यक्त्व बना रहेगा। यह जो मिथ्यात्व में आता है तो क्या होता है, अब मिथ्यात्व का उदय चलेगा, ये नीचे उदय की बात बता रहे, मिथ्यात्व का उदय और दो प्रकृतियां पड़ी रहेगी सत्ता में है, परंतु उसमें क्या होता है वो दोनों टर्न होती रहती मिथ्यात्व में, और वो ऐसे टर्न होती होती कितने काल तक रह सकती, तो असंख्यात वर्षों तक रहती। अभी कोई जो अभी अभी मिथ्यात्व में आया है उसको दोबारा सम्यक तो हो जाए तो क्या होता है, अभी उसके तीन प्रकृति है ना सत्ता में और बहुत लंबी उसकी स्थिति है, तो कहते इसको वेदक सम्यक तो ही होगा, क्योंकि इतने लंबी स्थिति के साथ तीनों को उपशमाने का कार्य नहीं हो सकता। परंतु ये घटते 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 बहुत कम रह गए, कि मिथ्यात्व तो नया बनता है, मिथ्यात्व का बंद होता है तो अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों का होता रहता है, और वो बाकी प्रकृतियां कम होती 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 थोड़ी रहेगी। तो कहते कम होते होते सागर जितनी हो गई करीब, तब तब उसमें फिर अभी तीनों का ऐसा उपशम अंतर करके उसका उपशम कर सकते हैं। जब तक उतनी अंतर कोड़ा कोड़ी तीनों की थी तब तक उसको उपशम आने का कार्य नहीं कर सकता। तो उसको कहेंगे उतने काल तक, ये दो प्रकृतियां मिटने के लिए कितना काल लगता है, तो असंख्यात वर्ष, जिसको कहेंगे पल्ल के असंख्यात भाग प्रमाण काल बीत जाने पर ये प्रकृतियां मिटती चली जाती है, एकदम उसकी स्थिति कम रहती है। और मिथ्या तो की तो लंबी है क्योंकि नया बंद हो रहा है, तब जाके इसका प्रथम उपशम सम्यक तो दोबारा हो सकता है। एक बार प्रथम उपशम होकर जीव गिर गया है मिथ्यात्व में, दोबारा प्रथम उपशम होने के लिए बीच में कितना काल जाएगा, मिनिमम काल पल्ले का असंख्यात भाग, हाँ उतने काल में उसको वेदक सम्यक तो हो सकता है, बहुत बार हो सकता है। ये बात ख्याल में आई? अभी आगे प्रथम ऑप्शन नहीं होगा ना, यही तो बता रहा है। हाँ उसको प्रथम ऑप्शन ही कहेंगे, तभी हम यहाँ टीका पढ़ेंगे यहाँ से ग्रंथ से। चारों गति वाला अनादि या सादी मिथ्या दृष्टि, ये सादी सादी करते हैं स प्लस आदि, जिसको आदि है, जो अनादि से ही किसी ने सम्य दर्शन प्राप्त नहीं किया है तो उसका मिथ्या तो कब से है, तो कहते हैं अनादि से, उसके कोई बिगिनिंग नहीं है। परंतु जिसने एक बार सम्य तो प्राप्त करके जो मिथ्या तो में आया है उसका मिथ्या तो कैसा है, सादी विद बिगिनिंग। कब हुई बिगिनिंग, जब सम्यक्त से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया तब से उसकी आदि हुई, तो स प्लस आदि सादी कहेंगे, और जिसको आदि नहीं है जो अनादि से चला आ रहा है उसको अनादि कहेंगे। तो ये सादी अनादि मिथ्या दृष्टि, संगी यानी संगी पंचेंद्रिय, क्योंकि ये मन के द्वारा तत्व जो आगे बात आएगी उपदेश सुनेगा उस पर विचार करेगा, मन के द्वारा निर्णय तक पहुंचेगा बार बार ऐसे ये ऐसा ही सही है, तो फिर जाके उसको समय दर्शन, इसलिए संगी होना आवश्यक कंडीशन। संगी कहने से संगी पंचेंद्रिय है, और पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था उसमें तो समय दर्शन की नई प्राप्ति नहीं होगी। पूर्व भोग का समय तो है तो वो अन्य भाव में सम्यक के साथ जा सकता है, अपर्याप्त अवस्था में वो सम्यक दृष्टि रह सकता है, परंतु नया सम्यक दर्शन वहां प्राप्त नहीं हो सकता। गर्भज, ये गर्भज कंडीशन जो है अभी हमने देखी थी तिर्यंच मनुष्यों के लिए लागू होगी। मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारक, अभी विशुद्धि का अर्थ यहां बताया क्या, मंद कषाय रूप विशुद्धि का धारक, क्योंकि जीव के परिणाम बदलते रहते हैं, कभी विशुद्धि होती कभी संकलेश होते रहते हैं, तो सम्यक्त का कार्य कौन से परिणामों में होगा, तो विशुद्ध परिणाम में, क्योंकि सहज है ना, जब जीव तत्व का चिंतन कर रहा है तो उसकी विशुद्धि बहुत बढ़ रही है, उस काल में उसको सम्यक्त की प्राप्ति होगी। गुण दोष के विचार रूप साकार ज्ञानोपयोग से संयुक्त जीव, गुण दोष के विचार रूप यानी जो हिताहित रूप कहेंगे, क्या सही है क्या गलत है उसका विचार, कौन से तत्व सही है वो ऐसे ही है आदि जो बातें चलेगी उसकी, तो वो साकार ज्ञानोपयोग से संयुक्त जीव, ज्ञानोपयोग साकार ही होता है इसलिए उसको साकार ज्ञानोपयोग कहेंगे। पांचवी करण लब्धि में से उत्कृष्ट ऐसे वर देखे ना, पंचम कौन सी है तो करण लब्धि, उसमें भी उत्कृष्ट कौन सी है तो करण लब्धि में भी तीन अलग अलग है, कौन से तीन करण परिणाम है, अधप्रवृत्तकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, और उसमें अनिवृत्तिकरण वो सबसे उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट ऐसे अनिवृत्तिकरण के अंत समय में प्रथमोपशम सम्यक्त को ग्रहण करता है, यानी अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय बीत गया और नेक्स्ट समय में उसको सम्यक्त की प्राप्ति हुई। यहाँ ऐसा जानना, ये तो बिल्कुल कंडीशंस बताई कि प्रथम ऑप्शन सम्यक्त किसे होता है, अब उसी की चर्चा करेंगे आगे। हाँ, कौन से नौ बत्ते बताए? हाँ बोलो, चारों गति की। देखो संगी पहले, संगी पर्याप्त गर्भ, ये तीन बता देना। विशुद्धि
वाला,
हाँ, करण लब्धि के अंतर्गत। अभी इसमें एक शब्द नहीं डाला है, चारों गति वाला भव्य, क्योंकि अभव्य के समय दर्शन नहीं होगा। अब वो बात यहाँ नहीं आई, वो आगे चल के बताएंगे। बहुत सारी बातें, इसका विस्तार और आएगा। क्यों से ना मंद विशुद्धि तो अभव्य को भी होगी, इतनी जो मंदता है कषाय की, वो भी प्रायोगिक लब्धि तक उसके लब्धि। अब यहाँ पांच लब्धि का प्रकरण चलेगा, उसमें से चार लब्धि तो अभव्य के भी होती है, उसको भी अनंतो बार हो चुकी है, परंतु करण लब्धि में प्रवेश नहीं हुआ है, उसको समय तो नहीं हुआ, क्योंकि उसके उसकी योग्यता ही नहीं है। ऐसे उसका पर्याय का क्रम है, किसी कर्म के उदय के कारण वो नहीं है। अब इसके यहाँ तो हम चले ही अभी पढ़ रहे हैं, परंतु इसका विस्तार से बिल्कुल सरल भाषा में विस्तार ये पंचलब्धि पुस्तक में लिखा है, इसी के आधार से लिखे। जीतू भाई के लिए बता रही हूँ कि यहाँ तो सबका अभ्यास हुआ है, परंतु उसमें आपको बहुत सारे बिल्कुल एक 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 शब्दों को विस्तार से समझाया। हाँ, उनके पास होगी ना पंचलब्धि पुस्तक, क्योंकि अभी ये जो विषय चल रहा है वो पूरी एक 200 पेज की पुस्तक है इसके, ये जो पहला अधिकार है। हाँ हाँ, आज लेकर गुजराती में है, सभी भाषा में, मराठी में, हिंदी, गुजराती में भी है। अभी यहाँ ऐसा जानना है भी, इसका उसका विस्तार बताएंगे। मिथ्यात्व तो गुणस्थान से छूट कर जो उपशम सम्यक तो होता है, उसका नाम प्रथम उपशम सम्यक। क्या कहा? मिथ्यात्व छूटकर जो सम्यक तो होता है, यानी उपशम सहित उपशम सम्यक तो होता है, ये लिखने की क्या जरूरत है? अब आगे चलकर द्वितीय उपशम की बात आएगी, तो वो मिथ्यात्व में से द्वितीय उपशम नहीं होता है, वो वेदक सम्यक तो में से द्वितीय उपशम सम्यक होता है। इसलिए ये उसकी परिभाषा हो गई, मिथ्यात्व में से छूटकर जिसके उपशम सम्यक तो होता है, उपशम शब्द डालना जरूरी है। मिथ्यात्व में से सम्यक होता है ऐसा कहेंगे तो वेदक सम्यक तो भी हो सकता है, इसलिए मिथ्यात्व में से जो उसके उपशम सम्यक तो होता है उसका नाम प्रथम उपशम सम्यक है। तथा आगे लिखा है उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए, ये उपशम श्रेणी किसको कहना है? देखो मुनिराज का जो रेगुलर गुणस्थान है छठा सातवां चलता रहता है, जब और अंतरंग में उनकी स्थिरता बढ़ती है तो आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, फिर दसवां, नौवां, आठवां, सातवां, छठा, ऐसे जो उनके परिणाम पूर्ण वितरकता तक पहुंचकर वापस लौटते उसको कहेंगे उपशम श्रेणी। क्षपक श्रेणी सातवें के बाद आठवां, नौवां, दसवां, बारहवां, अरिहंत अवस्था, नो रिटर्न, वहां कर्मों के क्षय हो जाता है। उपशम श्रेणी में अंतर्मूर्त के लिए दबे रहते हैं, पूर्ण वितरकता तक पहुंचता है परंतु कर्म सत्ता में है, और यहाँ सत्ता में से कर्मों का नाश करते करते ऊपर चढ़ते हैं, वो है क्षपक श्रेणी। तो उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए क्षोपशम सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व होता है, प्रथम उपशम सम्यक्त्व किसमें से होता है? मिथ्यात्व में से जो उपशम सम्यक्त्व होता है उसको प्रथम उपशम सम्यक्त्व कहते हैं, और उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले क्षोपशम सम्यक्त्व में से जो उपशम सम्यक्त होता है उसका नाम द्वितीय उपशम सम्यक्त। इसलिए यहाँ मिथ्या दृष्टि का ग्रहण किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ विषय प्रथम उपशम सम्यक्त्व का चल रहा है। यह प्रथम उपशम सम्यक्त्व तिर्यंच गति में असंगी जीव है। ये तिर्यंच गति में असंगी जीव है ऐसा क्यों कहा वीरेश भाई? अन्य गतियों में क्यों नहीं कहा?
होता है।
तीन इंच गति में ही होते हैं, क्योंकि एक इंद्रिय भी असंगी है, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंचेन्द्रिय में भी असंगी टाइप की वैरायटी है। तो ये सब किसमें है, तो तीन इंचों में। मनुष्य, देव और नारकी संगी पंचेन्द्रिय ही है, उसमें कोई असंगी नहीं होती। तो कहते प्रथमोपशम सम्यक्त्व, तिर्यंच गति में असंगी जीव है उनके नहीं होता। तो असंगी जीव है के लिए ब्रैकेट में लिख दिया एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक। इन्हें यहाँ गाथा में क्या बताया, संगी के होता है, उसमें से अर्थ क्या निकला, असंगी के नहीं होता। अभी हम तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ रहे, अर्पितान अर्पित सिद्धे है, मुख्य का कथन किया, उसमें वो जो गौण है वो उसमें से अर्थ निकलता है, गर्भित है उसमें। संगी के होता है यानी असंगी के नहीं होता। अब मनुष्य और तिर्यंच गति में लब्धि अपर्याप्त और सम्मूर्छन है उनके नहीं होता। यानी लब्धि अपर्याप्त उनको तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा ना संगी के बाद पूर्ण लिखा, यानी पर्याप्त तो होने चाहिए, इसलिए लब्धि अपर्याप्त में तो होगा ही नहीं और निवृत्ति अपर्याप्त में भी नहीं होगा। उस अवस्था में पर्याप्त होने के पश्चात होगा। तो कि सम्मूर्छन है, अभी सम्मूर्छन का हमने अर्थ देखा था, तो उनके नहीं होता। तो क्या होता है, तो गर्भज में ही होता, ही लगा, क्योंकि गाथा में भी गर्भ शब्द आएंगे। संगी पंचेन्द्रिय सम्मूर्छन तिर्यंचो में शोषण सम्यक तो हो सकता है, परंतु प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं हो सकता। देखो मूल पुस्तक में तो ये वाक्य नहीं था, परंतु हमारी समझ में आवे इसलिए लिख दिया, क्योंकि हम तो हमेशा सुनते आए ना कि स्वयं भ्रमण में महामत्स्य कितने ही सम्मूर्छन पंचम गुण स्थान वर्ती, यहाँ तो लिखते गर्भजम के होता है, तो वहां उनको कैसा हुआ, तो उनके तो क्षोभन समय को। पुनश्च चारों गतियों में संक्लेशता से युक्त जीव के नहीं होता। परिणाम दो प्रकार के, संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम। तो विशुद्धि के काल में होगा, संक्लेश के काल में नहीं होगा। अनाकार दर्शन उपयोग के धारिक जीव के नहीं होता, तो किसके होता है, साकार। देखो यहाँ तो पॉजिटिव में कथन है, यहाँ उसके किसके नहीं होता है उसको हम देख रहे हैं। गाथा में किसको होता है बताया, उसी के आधार से किसको नहीं होता वो हम देख रहे हैं। क्योंकि यह दर्शनोपयोग में क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां तत्व विचार संभव नहीं है। तो तत्व विचार के काल में, उसमें ज्ञानोपयोग लगा है ना तत्व विचार, उस काल में उसको सम्यक हो। वहां किसका, देखो आपका प्रश्न है कि अनाकार दर्शन उपयोग का एग्जाम्पल क्या, पहले हम देखते हैं उसको कब होता है, कैसे होता है। ये जो दर्शन उपयोग है वो ज्ञानोपयोग होने के पूर्व में होता है। तो क्या होता है, हम किसी एक चीज को देख रहे हैं, देख रहे नहीं जान रहे, हमने जाना ये पेंसिल है, हमारा उपयोग यहां से पलटा और ये पट्टी की तरफ आया, तो यहां आते ही हमने ये पट्टी ऐसा नहीं जाना, वो जानने के पहले क्या हुआ था ये अपने ख्याल में नहीं आता, इतना वो छोटा काल है अंतर्मूर्त का, परंतु इतना वो छोटा है कि हम पकड़ नहीं सकते उसको। तो हमने इसको, इसका ज्ञान यानी वो ज्ञान उपयोग यहां से छूट गया और दूसरी चीज के तरफ हुआ, तो वहां क्या है, उसके पहले में पहले उसकी सत्ता कोई है इतना ग्रहण हुआ, और फिर ज्ञान ने वो, ये पट्टी है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ अंक लिखे, ये सब ज्ञान ने जाना, ये ज्ञानोपयोग यानी मति ज्ञान हम कहेंगे ना, इंद्रिय ज्ञान हुआ, चक्षु इंद्रिय के द्वारा ज्ञान हुआ, उसके पहले दर्शन उपयोग हो चुका, तो उसको हम दृष्टांत यानी उसको हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जब पकड़ने जाओ डिस्क्राइब करो तो ज्ञान हो जाता, वो दर्शन नहीं रहता। ऐसे तो हम हर बार हमारा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग अल्टरनेटली चल रहा है, क्योंकि हमारा ज्ञान एक चीज से दूसरी चीज तरफ जाता है, मन के द्वारा भी विचार एक से दूसरा कुछ चलता है, तो बीच में वो दर्शनोपयोग भी होते रहते हैं। अब आगे, हाँ हाँ जरूर बोलिए।
दर्शनोपयोग बात ऐसी होती है कि तो चैतन्य में उद्योग जो है उसके दो भेद होते हैं, एक दर्शनोद्योग और एक ज्ञानोद्योग। और जिसको हम कहते हैं कि जीव कहता है क्योंकि ज्ञाता दत्ता है, या दत्ता कहता है कि ये दर्शन का कार्य क्या है, जो अनेक चीजें हैं उसमें भेद किए बिना सबका अवलोकन करना, अवलोकन यानी जानना, जानना कहो तो ज्ञान में जाएगा, अवलोकन करना कहो तो देखना होगा। तो क्या कहते हैं, अभी हम केवल दर्शन और केवल ज्ञान की अपेक्षा से देखें, केवल ज्ञानी क्या जानते हैं, जो विश्व के सारे ग्रंथ प्रत्येक जगह के सारे ग्रंथ और प्रत्येक ग्रंथ की सारी प्रज्ञाएं सबको जुदा 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 ठीक समय में जाते हैं। लेकिन वहां दर्शनों के जो होता है उनका उचित समय वो तो भेद किए बिना सबको है, बस
देखो वहाँ तीन निद्रा के उदय का अभाव कहेंगे। ये निद्रा कितने प्रकार की होती है, पांच, कौन सी
निद्रा?
ये स्थान वृद्धि क्या होता है? हाँ, देखो ये पांच प्रकार के जो नींद है, पहली कौन सी निद्रा बताई आपने, वो क्या एकदम अल्प मंद ऐसी निद्रा, निद्रा कहने से उससे गाड़ी, प्रचला उससे गाड़ी, प्रचला प्रचला और गाड़ी, स्त्यान वृद्धि सबसे, कि नींद में उठकर चलकर आते हैं, कुछ बड़बड़ाते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं तो फिर भी उसको पता नहीं चलता, वो कैसे, तो स्त्यान वृद्धि। तो स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, ये तीन अत्यंत गाढ़ी निद्रा है, उस काल में समय दर्शन नहीं होगा। निद्रा प्रश्न तो ऐसी होती है कि बहुत तरल वाली निद्रा, फिर भी उसमें जागृत अवस्था में होगा।
सबसे हल्की निद्रा प्रचला।
तो उसके उदय का अभाव कहेंगे, यानी यहाँ कथन करते समय जागृत अवस्था में होता है ऐसा कथन, यानी नींद में समय दर्शन हो जाए, ये बात तीन काल में नहीं होगी। कोई कोई हमें ऐसे मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है काल मुझे रात को सोते समय या सोते हुए समय दर्शन हुआ, या किसी को सपने में भी हो जाता है। ये जागृत साकार उपयोग में ही होगा, तत्व के विचार के काल में होगा, यानी विचार छूटकर होगा तो कहेंगे तत्व के विचार के काल में, यानी ज्ञानोपयोग है वहां। देखो वहाँ तीन निद्रा, तत्व के विचार
के छूटने के बाद होगा, माने
विचार यानी ज्ञान तो रहेगा, पर विकल्पात्मक जो है ऐसा है वैसा है वैसा, क्योंकि हम तो जल्प यानी उसको विकल्प बना बना कर सोचते रहते हैं, वो बात नहीं। जानने रूप विकल्प या विचार के दो अर्थ होते हैं, यानी पूरा निर्विचार यानी ज्ञान रहित तो नहीं होता है, यानी जानना तो चल रहा है, तत्वों को जानता है और फिर अपने शुद्धात्मा को ग्रहण करता है, नहीं जानते रहता है, परंतु वहां मैं ऐसा हूं वैसा हूं वैसा ऐसे शब्दात्मक ऐसा नहीं चल रहा है उसे, बस उसने डायरेक्ट पकड़ लिया उसे। जैसे किसी आप आम को जानना है, कैसे जान रहे, नाक में लगाएंगे कि खाली विकल्प करेंगे, आम बहुत बढ़िया है, वो पीला है, वो मीठा है, अरे जानना है तो डायरेक्ट रस चखो उसका, तो उसको कहेंगे हमने अनुभव कर दिया उसको, और तृप्त हो गए तो यहाँ पर भी आत्मा को जानने के बदले आत्मा के बारे में हम केवल चिंतन पूर्वक, वो चिंतन यानी वो विकल्प छूटकर आत्मा का अनुभव होगा, तो तत्व विचार के काल में वो सहज होगा। तत्व विचार में जीव इतना डूब जाता है कि वो तो कब यानी विकल्प छूट जाता है और उसका आत्मा का अनुभव रह जाता है। परंतु वह ऐसे ही विकल्प करते करते होता जाएगा, यह मान्यता गलत है। विकल्प छूटने से होगा, ख्याल में
ना? आपको पता होगा जो जो हमेशा कहते हैं समय जैसे मैं हूँ आत्मा जो भोगो न पड़े, यानी मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं अनादि हूँ, ये तो विकल्पात्मक विचार चल रहे थे। वो जब तक है निर्ण विकल्प हो जाए, भेद भी नहीं होगा और कोई विचार नहीं होगा, विचार जैसे विकल्प भी नहीं होंगे तभी आत्मानुभूति होगी। हम भी तो ध्यान करने बैठते हैं समय व्यायाम में, ध्यान में ध्यान से बना ऐसा, अरे भाई है ना तो अभी उसको जानना नहीं, इसके विकल्प उठा उठा के उसमें अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि हम विकल्पों में ही अटके हैं।
यानी कहीं अंदर में अभिप्राय की विकल्पों से यह होने वाला है, अभिप्राय में पड़ा है, इसलिए ध्यान के नाम पर विकल्प उठाने की कोशिश करते, विकल्प उठते उसके उसका मना नहीं है।
वो पूछते हैं कौन सा विकल्प करने से विकल्प तो नहीं होगी भैया,
छुटने से होगी। हाँ देखो ये जागृत अवस्था में होता है, यहाँ नहीं लिखा है परंतु आगे चलकर बताया, हमने जो आवश्यक कंडीशन देखी ना उसमें ये जागृत अवस्था में होता है, ये कंडीशन डालनी और आगे लिखते हैं यहाँ पर भव्य के ही समय तो होता है इसलिए अभव्य के नहीं होता, किसको नहीं होता तो अभव्य के तो होता ही नहीं, ये भी विशेषण यहाँ पाए जाते हैं, भी लगाए ना, ये भी विशेषण है, यानी जो पहले जो विशेषण देखे उसमें वो जागृत और फिर भव्य ये दो कंडीशन और लगाना। आगे प्रथम ऑप्शन सम्यक तो होने से पहले यानी उसके पूर्व अवस्था में मिथ्यात्व तो गुण स्थान में पांच लब्धि होती है उनका व्याख्यान कहते हैं, यानी जब तक ये पांच लब्धि है तब तक अभी जीव का गुणस्थान मिथ्यात्व तो है, करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व तो गुणस्थान है और नेक्स्ट समय में उसको सम्यक तो होगा, प्रथम ऑप्शन सम्यक चौथा होगा या पांचवा होगा या सातवा होगा, सम्यक तो होगा उसको। तो ये जो कोई पांच लब्धि यहाँ बताई है उसका यहाँ व्याख्यान करेंगे, ये तीन नंबर की गाथा है। खय उमीय विसोही देशण पाऊग करण लब्धिय चत्तारी विसामन्ना करणं सम्मत चारिते क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य करण लब्धयश्च चतस्रोपि सामान्यात् करणं सम्यक् वचारित्रे। क्या कहते अभी पांच नाम पहली लाइन में बताए, क्षयोपशम हरेक के साथ लब्धि शब्द लगाना क्योंकि इन्होंने पांच नाम लिखकर लास्ट में लब्धयः यानी अनेक लब्धि बता दी, तो हम एक एक के नाम के साथ लब्धि शब्द लगाएंगे, क्षोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये नाम आपको रिपीट करना है नलिन भाई, आप पहले करेंगे।
क्षोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि।
वीरेश भाई
क्षोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि,
विशुद्धि
लब्धि,
करण लब्धि। अब कौन बताना चाहते सुशील अभी? बराबर है, बोलो अरविंद भाई।
सक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि।
सरलाबेन
सक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि,
अभी आपने बहुत बार सुना, अभी और एक बार सुनने हम अंदा बिन बोलते रश्मि भी बोल देंगे। बहुत अच्छा, अभी आप रिपीट कर सकेंगे? हाँ बोलो बोलो, बहुत अच्छा लब्धि। हाँ
हाँ,
प्रायोग्य बहुत अच्छा। देखो सब आता है हमें, आपको लगता है कि कुछ नहीं समझे, सब कुछ। हाँ हमारे जैसे लोग समझते, आप क्यों नहीं समझेंगे। कभी ना कभी तो शुरुआत करनी है। हम कभी स्टेज पर थे, अभी थोड़ा थोड़ा बार बार पढ़ने से कुछ कुछ शब्द आने लगे हैं। तो पहली लाइन में हमने देखा क्षोभषण विशुद्धि देशना प्रायो करण लब्धया, अनेक सबको मिलकर लब्धया के
क्या दूसरे भी नाम है
किसके?
ये जो पांच लब्धी है
वो अन्यत्र कहीं नियम सार में अन्य नाम आते हैं, उसकी चर्चा पंचलब्धि पुस्तक में की है, देखना उसमें उसका कहां क्या अर्थ है, उसकी भी चर्चा की। चतस्रोपी सामान्यत, यानी इसमें से जो चार है वो तो सामान्य लब्धि है, यानी वो तो भव्य अभव्य होंगे, दोनों को भी हो सकता है, उसकी विशेषता नहीं है। करणम सम्यक तो चारित्र, जिसको करण लब्धि में एंटर हुए वो सम्यक और चारित्र की प्राप्ति होगी, यानी जब सम्यक की और चारित्र की प्राप्ति होती है तो वहां करण लब्धि होती है। देखो अभी टीका पढ़ेंगे। क्षोभषण विशुद्धि देशना प्रायोग्यता करण, ये पांच लब्धि है। प्रायोग्यता भी कहते हैं, प्रायोग्य भी कहते हैं, इसका अर्थ कुछ विशेष प्रयोग करना ऐसा उसका अर्थ नहीं है। लोग समझते हैं इसको अभी पढ़ा है, इसको प्रयोग में लाना, वो प्रायोग्य ऐसा है नहीं। वो क्या है उसका अर्थ वो देखेंगे। हाँ वो प्रैक्टिकल, वो प्रयोग्यता नहीं है। हाँ वहां आदि की चार तो साधारण है, साधारण का अर्थ क्या है, भव्य के और अभव्य के भी होती है, यानी अभव्य जीव भी, वो देशना भी सुनी है, प्रायोगिक लब्धि ने कर्मों में कुछ जो वेरिएशन होना है, स्थिति आदि घटना वो भी कार्य हुआ है, फिर भी करण लब्धि नहीं हुए, आत्मसन्मुख परिणाम नहीं हुए है, बस सुना है, सोचा है, दूसरों को भी पढ़ा है और चला गया, उसी को सम्यक तो नहीं हुआ। परंतु करण लब्धि भव्य ही के सम्यक और चारित्र के साध्यभूत होते हुए ही होगी। क्या था भव्य ही, इसलिए करण लब्धि होगी ही नहीं, जब उसके सम्यक या चारित्र की प्राप्ति होती है तो उस काल में, उसके पूर्व काल में करण लब्धि होती है, क्योंकि भव्य होते तो सभी भव्य अभी तक तो मोक्ष जाने चाहिए थे, परंतु भव्य के भी ये सभी पांच समवाय उसमें भी लगाए, उसका जब काल लब्धि है, उसकी जब पुरुषार्थ से काल लब्धि होने पर, होनहार होने पर, ये सब उसको पांचों ही समवाय लगेंगे। स्वभाव में किस समय का उसका वो तो नक्की है, उसके अनादि अनंत पर्याय के जो कुछ उसका समूह है उसमें उसकी समय दर्शन की निश्चित पर्याय है, निश्चित समय पर उसके अपने पुरुषार्थ से ही होगी, समय निश्चित है तो बिना पुरुषार्थ के होगी ऐसा भी नहीं, और उसके पूर्व पर्याय का जो क्रम है ये पांच लब्धि का वो भी वहां होगा ही होगा। जब देखा है भगवान ने, तो होना है तो हो जाएगा। अभी जाके हम जाके थोड़ा टीवी सीरियल देखेंगे, कोई पिक्चर देखेंगे तो कहते हैं ऐसी वाले को नहीं होगी, होना है तो इस पांच पर्याय के क्रम पूर्वक ही होगी। ये अंतर्मूर्त अंतर्मूर्ति है, और सब मिलकर भी सम्यक तो होना है तो उसके पहले एक अंतर्मूर्ति में पांचों होती है, एक एक की चर्चा करेंगे तो उसकी अधिक खुलासेवार हम कहेंगे। नहीं तो अब तक क्या समझते थे, ये संगी पंचेंद्रिय ना तो क्षोभषण लब्धि उसको है ही, ऐसा बहुत से लोग बोलते भी है। जब पंचलब्धि पुस्तक लिखी तो अनेक विद्वानों के फोन तक आ गए। देशना लब्धि भी हमने एक बार देशना सुनी तो हमारी चल रही, चल नहीं रही है, देशना सुनी है परंतु वो लब्धि कब कहेंगे, उस समय जब हम विचारों में, तत्व विचारों में लेंगे तो उस अंतर्मूर्त तक वो चलेगी। नहीं तो एक बार सुना है और फिर जाके हम सुबह स्वाध्याय में किया, इन्हें एक घंटा भर स्वाध्याय किया, फिर जाके दुकान में बैठे तो वो विशुद्धि भी रही कि देशना भी ले गई। हाँ वो उसके ज्ञान में चल रही है परंतु उसने जब उसको स्मरण में लिया तब उसको हम फिर लब्धि में कहेंगे, यानी वो सालों तक नहीं, 40-40 साल तक हमारी देशना लब्धि चल रही है ऐसा नहीं कहेंगे। सब मिलकर अंतर्मूर्ति, ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि क्षोभषण लब्धि को भी अंतर्मूर्ति, विशुद्ध लब्धि को भी अंतर्मूर्त वाले लिए अभी चर्चा करेंगे उसकी। क्योंकि इसके
साथ
20 साल रहने वाले ये सभी ऐसा ही मानते हैं कि हमारी क्षोभम लब्धि तो है, विशुद्धि लब्धि है, देशना हमने सुनी, हमारी देशना लब्धि भी चल रही है, ये तो हमारे तो इतने 50 साल से 40 साल से हमारी सब चल रही है और हम प्रयोग भी करते रहते हैं, हमारे प्रायज्ञ लब्धि भी है। अभी केवल करण ऐसा नहीं है, जिस काल में तत्व विचार मिलेगा उस काल में ये सब शुरू होगी एक साथ। हाँ ठीक है, उसने सुनी, इस भव की क्या बात है, पूर्व भव की भी देशना काम आएगी, परंतु लब्धि कब कहेंगे, वो स्मरण में उस पर विचार चलेगा, तत्व विचार, तब कहेंगे हाँ सब उसके साथ में, क्योंकि वो जो धारणा में जो ज्ञान है अभी उस पर उसको विचार में लिया, तत्वों का वैसा चिंतन चला, तो हम कहेंगे इस काल में उसकी देशना लब्धि चलेगी। और उसके लिए कंडीशन है कि वो ज्ञानी के द्वारा उसको देशना सुनना आवश्यक है, वो सुनने की बात है, वहां भी उसकी चर्चा आएगी एक एक लब्धि में। इसके लिए बहुत सारे ग्रंथों का बहुत सूक्ष्मता से अभ्यास करना पड़ा, जब पुस्तक लिखी थी, क्योंकि कहीं पर भी दो चार पेज से ज्यादा पंचलब्धि का वर्णन नहीं है, और मैं अपने मन से कुछ नहीं निकला, सब ग्रंथों में से ही निकाला, ये लाठी संहिता और अन्य अन्य कितने कितने ग्रंथ हमने देखे थे, पंडित आशाधर जी के भी कुछ ग्रंथ पढ़े थे। हाँ देखो अभी हम चार न... समय हो गया, कल
जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देव।